अच्छा जी, बिस्मिल्लाह अव्वल हु आखिर हु। सर कोई साहब मेरे वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, अब तक की अगर रिकॉर्डिंग उनके पास हो तो मुझे प्लीज़ बाद में ईमेल कर दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। अच्छा जी, स्लाइड नंबर 6, तुकद्दिमु। तुकद्दिमु को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, तुकद्दिमु प्लस वाव अलिफ। कदम हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं पेश कदमी करने के मानों में, कदम उठाओ, पेश कदमी करो, इकदाम करो, तकदीम, कदम, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसके मानी क्या है? आगे बढ़ना, पेश कदमी करना। अब इस कदम से पहले ता लग गया है, ता जो है वो मुखातिब के मानों में आता है। किसी कलमे से पहले अगर ता आ जाए तो इसके मानी यू सेकंड पर्सन के मानों में आ जाता है कि तुम, मुखातिब के मानों में आ जाता है। और देखें, ता कदम तुम एक आगे बढ़ो, ता कदम के आगे वाव वलिफ लग गया और हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में कि वाव वलिफ जो है वो जमा की अलामत है। सिर्फ अगर तुकद्दिम आ जाए, अगर सिर्फ कदम आ जाए यानी पेश कदमी कर, तुकद्दिम आ जाए तू पेश कदमी कर, और तुकद्दिमु वाव अलिफ आ जाए या वाव नून आ जाए तो इसको जमा बना देते हैं, तुम से तुम सब पेश कदमी करो। तुकद्दिमु तुम सब पेश कदमी करो, ला तुकद्दिमु तुम सब पेश कदमी ना करो, या अय्युहल लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुकद्दिमु पेश कदमी ना करो। जब हम ऐसे ग्रोह की तरफ इशारा कर रहे हो या ऐसे ग्रोह को मुखातिब कर रहे हो जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हों तो हम मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ यहाँ मुजक्कर को पुकारना हो तो उसे मुजक्कर का अल्लज़ीना आता, अगर सिर्फ मौनस को पुकारना हो तो उसे मौनस के लिए अल्लाह ही आता। मगर यहाँ चूंकि ग्रोह के मुतालिक बात हो रही है यानी तमाम जनरल मुसलमानों के मुतालिक बात हो रही है तो मुजक्कर का ही सीगा इस्तेमाल हो रहा है। या अय्युहल लज़ीना, अल्लज़ीना जो है मुजक्कर के लिए है। या अय्युहल लज़ीना आमनु ए वो तमाम लोगों जो ईमान लाए हो, ए अहले ईमान, ला तुकद्दिमु या ला जो है वो हुक्म के लिए आया है, मना करने के लिए आया है कि तुम सब आगे ना बढ़ो। इंशाल्लाह इसी सूरत में आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला एक आयत में ये बता औरतों के लिए अलग अहकाम दे रहे हैं और मर्दों के लिए अलग अहकाम दे रहे हैं, यानी अहकाम एक ही है, अलग अलग स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ मुज़क्कर को अलग बताया गया है और मुअन्नस को अलग बताया गया है। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 7, सातवीं स्लाइड। बैना यदई, बैन बैन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं दरमियान में, जैसे बैन लकवामी, और यद हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बमानी हाथ के। तो बैना यदई, अगर आप दोनों हाथों को सामने उठाएं अपने सीने के सामने तो इसके मानी क्या हो जाएंगे? सामने। बैना यदई दो हाथों के दरमियान, बमानी सामने के। उर्दू अरबी में महावरा है, महावरे की जबान है, दोनों हाथों के दरमियान सामने वाला हिस्सा ही होता है। अगर आप दोनों हाथों को सीने के सामने उठाएं तो सामने के मानी में आता है। बैना यदई के मानी क्या हुए? सामने। बैन बैन अब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं यद एक हाथ के और यदई दो हाथों के। तो बैना यदई दो हाथों यानी के सामने के मानों में। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 8, आठवीं स्लाइड। अल्लाह और रसूल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह लफ्ज़ जलाला है और उर्दू जबान में इस्तेमाल करते हैं। वाह भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं शब रोज, लेलो नहार, सुबह शाम। वाह बमानी और के हैं, एंड, ए एन डी एंड के हैं। तो वाह भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रसूल भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और रसूल के आगे ही लगा हुआ है, प्रोनाउन लगा हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। स्लाइड नंबर 9 देख लेते हैं जनाब। स्लाइड नंबर 9, जनाब लेफ्ट साइड में देखें, आपके पास पांच ज़मीरें लिखी गई हैं, हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना। कलम उस मुज़क्कर का, कलम हु, कलम उस मौनस का, एक मौनस का, कलम हा, कलम उन दो मुजक्करों का, कलम हुमा, कलम उन दो मोनसों का, कलम हुमा, कलम उस एक मुजक्कर और एक मोनस का, कलम हुमा। तो दो की तरफ अगर हमें जमीर इशारा करना हो, चाहे वो मुजक्कर हो, चाहे दोनों मुजक्कर हो, चाहे दोनों मोनस हो, चाहे एक मुजक्कर एक मोनस हो, हम कलम हुमा इस्तेमाल करते हैं, यानी हुमा इस्तेमाल करते हैं। और कलम उन तीन या तीन से जायद मुजक्करों का, कलम हुम, कलम उन तीन या तीन से जायद मोनसों का, कलम हुन्ना। हु, हुमा, हुम, हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना। हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना। हु एक मुजक्कर गायब के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। हा एक मोनस गायब थर्ड पर्सन के लिए। हुमा दो मुजक्कर गायब थर्ड पर्सन के लिए, या दो मोनस गायब थर्ड पर्सन के लिए, या एक मुजक्कर और एक मोनस गायब यानी के थर्ड पर्सन के लिए। हुम तीन या तीन से जायद मुजक्करों के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। और हुन्ना तीन या तीन से जायद गायब मोनसों के लिए यानी के थर्ड पर्सन के लिए। ये वो ज़मीरें हैं, प्रोनाउंस हैं, जो कि थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होते हैं अरबी में, और ये कलमे से अटैच होके आते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं ज़मीर मुत्तसिला, यानी अटैच होके आते हैं। और इसका तर्जुमा जो है मलकियत का होता है, जैसे कलम हु उस एक मुज़क्कर की कलम, किताब हु उस एक मुज़क्कर का किताब, कलमह उस एक मोहनस का कलम, किताबुह उस एक मोहनस का किताब, यानी का की का तर्जुमा आ जाता है, मलकियत का तर्जुमा आ जाता है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये थर्ड पर्सन की ज़मीरें पढ़ रहे हैं, यानी कि गायब की ज़मीरें पढ़ रहे हैं। आगे जाके इंशाल्लाह सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की भी ज़मीरें पढ़ेंगे। राइट कॉलम में देखें जनाब, यही ज़मीरें आती हैं मगर अल्फाज कलमात से अलग होकर आती हैं, तर्जुमा भी तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर वो एक तालिब इल्म है, तो हुआ तालिबुन मुज़क्कर गायब थर्ड पर्सन के लिए, एक के लिए हुआ, एक मुअन्नस गायब के लिए हिया, दो मुज़क्कर गायब, दो मुअन्नस गायब, या एक मुज़क्कर एक मुअन्नस गायब के लिए हुमा, तीन या तीन से जायद मुज़क्करों गायब के लिए हुम, तीन या तीन से जायद मुअन्नसों के लिए हुन्ना। अब इंग्लिश में तो हुन्ना, इंग्लिश में तो दे आ जाता है, उर्दू में तो वो आ जाता है, मगर अरबी का कमाल देखिए कि उस तमाम अलग अलग जिनसों के अलग अलग उसने ज़मीरें बनाई हैं और तादाद के साथ भी बनाई है, एक के अलग, दो के अलग और तीन के लिए अलग। तो हुआ तालिबुन वो एक तालिब इल्म है, या तालिबतुन वो एक तालिबा है, हुमा तालिबानी ये तालिबानी वो दो मुज़क्कर तालिब इल्म है, हुमा तालिबातानी वो दो मुअन्नस तालिब इल्म है, हुमा तालिबानी उसमें एक मुज़क्कर एक मुअन्नस दोनों शामिल हो गया, वो दो एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस तालिब इल्म है, हुमा तुल्लाबुन तीन या तीन से ज़ायद मुज़क्कर तालिब इल्म है, हुन्ना तालिबातुन वो तीन या तीन से ज़ायद मुअन्नस तालिबात हैं। तो ये दोनों लेफ्ट और राइट दोनों कॉलम जो है वो आपको ज़मीरें बता रही हैं, प्रोनाउंस हैं गायब की हैं, और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हैं। ना सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस है बल्कि सिंगल, ड्यूल और प्लूरल, वाहिद, तस्निया और जमा तीनों का ये बता रहा है। तर्जुमे में फ़र्क आता है, हुआ तालिबुन वो एक तालिब इल्म है, कलम हु कलम उस एक मुज़क्कर का। तो लेफ्ट साइड में जितने मुतसिला ज़मीरें हैं, अटैच ज़मीरें हैं, उन्हें का की का तर्जुमा आ जाता है, मलकियत का तर्जुमा आ जाता है। और जबकि सिंपल अगर सेंटेंस बनाना हो तो हम वो ज़मीरें लेके आते हैं जो कि राइट साइड में हैं, जो अलहदा होकर आती हैं, इन्हें हम कहते हैं ज़मीरें मुनफसिला। ये वो ज़मीरें हैं, प्रोनाउंस हैं, जो कि ज़मीरें मुनफसिला हैं, थर्ड पर्सन के लिए हैं, और वाहिद और मुज़क्कर गायब, मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से, वाहिद तस्निया और जमा के हिसाब से आती हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 10। तो अल्लाही अल्लाहु बैना यदी लाही व रसूलिही, अल्लाह हमें पढ़ लिया, अल्लाह उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वार उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रसूल भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ही हम पढ़ चुके हैं। अभी देखें ये जो ही है, ज़मीर है, कभी आपको इसके नीचे ही आएगा, खड़ी ज़ेर लिखी हुई नजर आएगी, कभी आपको इसके नीचे लेटी ज़ेर नजर आएगी, कभी इस हा के ऊपर पेश नजर आएगी, कभी इस हा के ऊपर उल्टी पेश नजर आएगी। चारों सूरतों में तर्जुमा वही होता है, उसका रसूल। अब उसके पीछे कुछ अलामत होती हैं, कुछ आमिल होती हैं, कुछ फैक्टर्स होती हैं जिनकी वजह से खड़ी ज़ेर, लेटी ज़ेर, सीधी पेश और उल्टी पेश हो जाती है। क्योंकि अभी हम ग्रामर के डेप्थ में नहीं जा रहे, इसलिए सरेदर हमें इतना ही समझ लेना चाहिए कि चारों सूरतों में, चाहे खड़ी ज़ेर हो, लेटी ज़ेर हो, खड़ी पेश हो या लेटी पेश हो, इसके तर्जुमा वही होगा, मुज़क्कर इस एक गायब मुज़क्कर की तरफ उसका इशारा होगा। तो अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह, वाह का तर्जुमा और, रसूल का तर्जुमा रसूल, और ही का तर्जुमा उसका रसूल। अब रसूल से पहले कौन आते हैं? अल्लाह आते हैं। तो रसूल ही अल्लाह का रसूल। बैना यदई सामने, अल्लाह की, अल्लाह ही अल्लाह के सामने, वा और रसूल, रसूल ही उसका रसूल। यानी लफ्जी तर्जुमा करें, सामने और सामने अल्लाह और रसूल उसका, सामने अल्लाह और रसूल उसका, तर्जुमानी हो गई अल्लाह और उनके रसूल के सामने। या अय्युहल लजीना आमनू, अहले ईमान, ए अल्लाह वालो, ला तुकद्दिमु, मत आगे बढ़ो, बैना यदई अल्लाही व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के सामने, अहले ईमान, अल्लाह और उसके रसूल के हुजूर पेश कदमी ना करो। ये अब नया लेसन शुरू होता है, स्लाइड नंबर 11। स्लाइड नंबर 11 से जनाब नया लेसन शुरू होता है, पिछले हमने रिवाइज कर लिया है। वत्तकुल्लाह, वा का तर्जुमा और, वा का तर्जुमा और इत्तकुल्लाह। अब यहां देखें, बताया जा रहा है कि कलमे से पहले अलिफ सिर्फ तीन हालतों में आता है, या तो मुतकल्लिम के इस्तेमाल में आता है जैसे अक्तुब, मैं लिखता हूं, या सवाल के लिए आता है अक्तुब, क्या मैं लिखता हूं, या हुक्म देने के मानों में आता है, अमर के मानों में आता है, उक्तुब लिखो। तो ये मुतकल्लिम के मानों में भी आता है, इस्तेफाम सवाल के मानों में भी आता है, और अमर के मानों में भी आता है। उस जुमले, उस आयत का कॉन्टेक्स्ट या कुछ सबक हमें यह बताता है कि यह आया मुतकल्लिम के तर्जुमे में आता है, या सवाल के तर्जुमे में आता है, या अमर के तर्जुमे में आता है। यहाँ यह हुक्म दिया जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है हमें कि यह हुक्म दिया जा रहा है। जब हुक्म देने के लिए यह अलिफ आता है तो कलमे में से यह हुरफ इल्लत हटा देता है, حرف علت واول اردو عربی فارسی میں تین ہوتے ہیں، الف واو اور یا. حرف علت واولز اردو عربی اور فارسی میں تین ہی ہوتے ہیں، الف واو اور یا. تو جب یہ کلمے سے جب حکم دینے کے لیے الف آتے ہیں تو کلمے میں سے حرف علت ہٹا دیتے ہیں. اب دیکھیں اتقو میں اس نے حرف علت کون کون سے ہٹائے ہیں. سلائیڈ نمبر 12 دیکھ لیجیے جناب. وتقو اللہ، اب دیکھیں اگر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اگر کہنا ہو کہ تقوی، اگر صرف تقوی استعمال کرنا ہو تو ہم تقوی یوز کرتے ہیں. اگر ہم حکم دینا ہے کہ بھائی تقوی اختیار کرو تو لفظ تقوی سے پہلے الف لگائیں گے. اب یہ الف وہ الف ہے جو کہ حکم دینے کے لیے آتا ہے، امر دینے کے لیے آتا ہے، الف امر آتا ہے یہ. اب جب تقوی سے پہلے ہم الف لگائیں گے تو واو اور یا حرف علت حذف ہو گئے، ہٹ گئے، غائب ہو گئے. جب امر دینے کے لیے الف آتا ہے تو اپنے بعد والے کلمے میں سے حرف علت حذف کر دیتا ہے، غائب کر دیتا ہے. تو تقوی میں سے واو یا ہٹ گیا تو الف اتک ہو گیا. اب صرف اتک کہا جائے تو اس کے معنی کیا ہو جائے گا؟ تو ایک ڈر. اتک کے معنی اگر صرف اتک کہا جائے تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ تو ایک ڈر. اگر یہ واو یا نہ ہٹا ہوتا اور الف آتا تو اس وقت ترجمہ کچھ اور ہوتا، حکم دینے کے معنوں میں نہیں آتا، یا تو استفہام کے لیے آتا یا متکلم کے لیے آتا. مگر یہاں چونکہ واو یا ہٹ چکا ہے تو اتک کے معنی تو ایک ڈر، اور اسی اتک کے آگے واو الف ہم نے لگا دیا تو جمع ہو گیا اتک، اتکو تم سب ڈرو. اچھا جن ہزاروں خواتین کو اگر یہ قاعدہ یاد نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، اتک اللہ جہاں جہاں آئے گا ہمیں یاد ہو جائے گا کہ اس کے معنی کیا ہے، تم سب اللہ سے ڈرو. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں گرامر یاد ہو جائے، قواعد یاد ہو جائیں، پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں قاعدے یاد نہیں رہتے مگر ہمیں ان الفاظ کے ترجمے یاد ہو جاتے ہیں. تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں ترجمے یاد ہو جائیں، خاص کر وہ کلمات، وہ الفاظ جو کہ قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سمیعٌ علیمٌ قدیرٌ، یہ جو بار بار آتے ہیں ان کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائیں. تو اتقوا اللہ کے معنی کیا ہو گئے؟ تم سب اللہ سے ڈرو. اتق ہو تو ایک ڈر، اتقوا واو الف لگ گیا یعنی کہ تم سب ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ. وا بمانی اردو میں، تقوا کے معنی ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا اور بچنے کے معنی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں. جی سلائیڈ نمبر 13. اچھا جی انا آ جائے یا انا آ جائے، انا یا انا دونوں صورتوں میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یقیناً یا بے شک کے. نون پر تجدید اگر ہو، جیسے انا میں بھی نون پر تجدید ہے اور الف انا میں بھی نون پر تجدید ہے، انا میں سے فرق کیا ہے کہ الف پر زیر ہے اور انا میں فرق کیا ہے کہ الف پر زبر ہے. تو انا ہو یا انا ہو ترجمہ یقیناً یا بے شک کے ہوتے ہیں. آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں کہ انا عموماً جملے سے پہلے آتا ہے اور انا عموماً جملے کے درمیان میں آتا ہے. آپ اپنے پاس ایکسٹرا نوٹ کر سکتے ہیں کہ انا عموماً جملے سے پہلے آتا ہے اور انا عموماً جملے کے بیچ میں آتا ہے. سمیعٌ علیمٌ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سماعت اور علم، اور یہاں ایک خاص وزن بتایا گیا ہے کہ جب سین ما میم عین سماع، جب اس کو ہم نے سمیعٌ بنا دیا تو اب اس کا خاص ترجمہ ہو گیا، یعنی ازل سے ابد کے سننے والے، اور یہ صفت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی طرح عین لام میم جب اس کو ہم نے علیمن کر دیا، خاص وزن میں ڈال دیا، تو اس کے معنی بھی یہ ہو گئے ازل سے ابد کے جاننے والے، اور یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے. اب یہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ عین لام میم کو جب ہم نے علیمن کر دیا تو ترجمہ یہ ہو گیا، اور سمیعن کر دیا تو ترجمہ یہ ہو گیا. اب مثال کے طور پر اپنے پاس آپ ایک لائن میں نوٹ کیجئے، علم عین لام میم علم، پھر آپ لکھ لیجئے تعلیم، پھر آپ لکھ لیجئے معلم، پھر آپ لکھ لیجئے عالم. آپ ان الفاظ میں غور کیجئے، چار پانچ کلمات میں غور کیجئے، ایک چیز آپ کو مشترکہ سب میں نظر آ رہی ہوگی، وہ ہے عین لام میم. اب اگر ابھی ابھی اس کو ہم عالم بناتے ہیں تو اس کا مطلب جس کے پاس علم ہو، تعلیم بناتے ہیں تو ایجوکیشن ہو گیا، معلم ہو گیا تو علم دینے والا ہو گیا، اسی طرح علیم ہو گیا تو اس کے معنی جاننے کے ہیں، ازل سے ابد کے جاننے والے. تو یہ جو مشترکہ حروف ہوتے ہیں انہیں ہم عربی میں کہتے ہیں مادے، اور ان مادوں کو مختلف ڈائی، مختلف سانچوں میں ہم ڈالتے ہیں، یا اس کا جو صحیح ورڈ ہے مختلف اوزان میں، مختلف وزن میں ڈالتے ہیں، تو اس کا ترجمہ اس وزن کے حساب سے بن جاتا ہے. جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اسے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کرتے کرتے ہمیں یاد ہو جائے گا. کم سے کم ہمیں اتنا یاد دے گا کہ سمیعن جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، علیمن جو ہے وہ اللہ کے لیے آتا ہے، دونوں میں معنی کیا ہے؟ ازل سے ابد کے سننے والے. तो समीउन भी अल्लाह के लिए है और अलीमुन भी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इनमें जो मादा लगा हुआ है समीउन में सीन मीम ऐन और अलीमुन में ऐन लाम और मीम। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 14 पहली आयत की आखिरी स्लाइड। जिस दिन कलमात में दायरे लगे हैं हम ये सब उर्दू में इस्तेमाल कर दें। ईमान अमनो यानी ईमान, ला यानी नहीं, कदम, बैन बैन, यद वानी हाथ, अल्लाह, वाओ उर्दू के उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रसूल उर्दू में है, इत्तकवा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, समाअत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और अलीम हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। चुनाचे कलमात हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो इस पूरी आयत में सिवाय या अय्युहल्लज़ीना और इन्ना के तमाम हम कलमात उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो अरबी ज़बान समझना मुश्किल नहीं है, खासकर उस तरीके से जिस तरीके से अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जनाब एक रवा तर्जुमा तर्जुमानी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अहले ईमान ला तुक़द्दिमू बैना यदय्यल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और इनके रसूल के हजूर पेशकदमी ना करो, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह समीउन अलीमुन अल्लाह सुनने और जानने वाले हैं। यकीनन इस पार्ट ऑफ के रूम में मुंतखब हिसाब सिर हुजरात के लेक्चर्स भी हो चुके होंगे। इसकी आयत नंबर 2 आयत नंबर 2 में 19 स्लाइड्स हैं, आप लोग लिंक सर्व कर लें और डाउनलोड कर लें। जी मैं इस वक्त कह नहीं रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें टोटल 19 स्लाइड्स हैं। अगर आप सब हजरात ने इसको खोल लिया तो मैं शुरू करूं। जी माशाल्लाह। तो आयत नंबर 2, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालकुम वअंतुम आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। अब हम इसका तजिया करते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं पुकारने के लिए या अय्युहा और अय्युहा हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी गालिबन आवाज नहीं आ रही होगी, दोबारा स्लाइड नंबर 1 देख लेते हैं। आयत नंबर 2 स्लाइड नंबर 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تعبط اعمالكم وانتم لا تشعرون। स्लाइड नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं या पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, या अय्युहा या यतुहा हम पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अल्लज़ीना अल्लज़ी अल्लती अल्लाई मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड नंबर 3, पिछली स्लाइड के बारे में ही है। अल्लज़ीना अल्लज़ी अल्लती अल्लाई ये तमाम कलमात बार बार इस्तेमाल होंगे। अल्लज़ीना जो सब अशख़ास, अल्लज़ी जो एक शख्स, अल्लती जो एक मुअन्नस, अल्लाई जो तमाम मुअन्नस। स्लाइड नंबर 4, आमनू फिर यहाँ ब्रेक किया गया है। अमना प्लस वाव अलिफ, वाव अलिफ, वाव नून और या नून जब किसी कलमे के आखिर में आए तो उसे जमा बना देती हैं। अमना जो एक शख्स ईमान लाया, आमनू जो सब अशख़ास ईमान लाए यानी कि ए अहले ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो तमाम लोगों जो ईमान लाए हो यानी या ए अहले ईमान। स्लाइड नंबर 5, ये भी रिपीट हुआ है। ला हुर्फ नफी है और मना करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस भी है और हुक्म देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहां भी कॉन्टेक्स्ट हमें यह बताएगा कि ला जो है वो मना करने के लिए आया है या सिंपल नेगेटिव के लिए आया। अब जनाब स्लाइड नंबर 6 देखिए, इसमें आपको कुछ नए कायदे बताए गए हैं। लेफ्ट कॉलम पहले देख लीजिए, जब किसी कलमे के आखिर में का की कुमा कुम कुन्ना तुन्ना और तुम आ जाए तो इनका तर्जुमा किस तरह होता है। का तुम एक मुजक्कर का, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए किताबू का, या नीचे आपके लिखा हुआ है कलमू का, तो का जब आ जाएगा तो ये अब हम जो ज़मीरें पढ़ रहे हैं, ये जो हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, ये सेकंड पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं, मुखातिब के लिए पढ़ रहे हैं, हासिर के लिए पढ़ रहे हैं। यू एक यू दो, तो जब हम एक के लिए इस्तेमाल करेंगे इसे किताबू का, तो तुम एक मुजक्कर की किताब, किताबू की, तुम एक मौनस की किताब, किताबू कुमा, तुम दो मुजक्कर की किताब, किताबू कुमा, तुम दो मौनस की किताब, किताबू कुमा, तुम एक मुजक्कर और एक मौनस की किताब, किताबू कुम, तुम सब मुजक्कर की किताब, किताबू कुन्ना, तुम सब मौनस की किताब। फिर किसी कलमे के आखिर में अगर तुन्ना आ जाए तो इसके मानी भी तुम सब मौनस, और अगर किसी कलमे के आखिर में तुम आ जाए तो उसके मानी तुम सब मुजक्कर के हैं। नीचे एग्जाम्पल बताई गई है, कलमु का, तुम एक मुजक्कर का कलम, कलमु की, तुम एक मौनस का कलम, कलम कुमा, तुम दो मुजक्कर या तुम दो मौनस का कलम, कलम कुम, तुम सब मुजक्कर का कलम, और कलम कुन्ना, तुम सब मौनस का कलम। ये वो ज़मीरें हैं जिस तरह हमने पिछले मतलब पढ़ा था, हमने पिछले मतलब गायब की ज़मीरें पढ़ी थी थर्ड पर्सन की, ये ज़मीरें, ये प्रोनाउंस हम सेकंड पर्सन की पढ़ रहे हैं, और ये भी कलमा से अटैच होकर आती हैं। ये भी ज़मीरें मुत्तसिला हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम हू हा हुमा हुम हुन्ना पढ़ा था, इस आयत में का की कुमा कुम कुन्ना तुन्ना तुम पढ़ रहे हैं। तो जब किसी कलमे के आखिर में का की कुमा कुम कुन्ना तुन्ना तुम आ जाए तो ये इसके मानी तुम ही के हैं, सेकंड पर्सन के हैं, या किसी कलमे से पहले ता आ जाए। देखिए तुन्ना के मानी तुम सब मौनस के हैं और कुन्ना के मानी तुम सब मौनस का, ये दो ये फर्क है, उसमें का आ जाता है, मलकियत आ जाती है, नस्बत आ जाता है तुम सब मौनस का, लेकिन तुन्ना में क्या होता है तुम सब मौनस। जैसे फाल तुन्ना, तुम सब ने ये फेल किया, तुम सब औरतों ने यह काम किया, जब तुन्ना आ जाता है तो ये इसके मानी हो जाते हैं तुम सब मौनस, और जब कुन्ना आ जाएगा जैसे किताबो कुन्ना, फिर हो जाएगा तुम सब मौनस की किताब। तो अपने वक्त पे जहां कुन्ना लगना चाहिए वहां कुन्ना लगता है, जहां तुन्ना लगना चाहिए वहां तुन्ना लगता है। हमारे जहन में ये होना चाहिए कि कुन्ना भी बमानी तुम सब मौनस के हैं और तुन्ना भी बमानी मौनस के, इंशाल्लाह वो कॉन्टेक्स्ट हमें ये बता रहा होता है कि ये तर्जुमा किस तरह होना चाहिए। अब जब किसी कलमे के आखिर में का की कुमा कुम कुन्ना तुन्ना तुम आ जाए या किसी कलमे से पहले ता आ जाए, इन सब से मुराद तुम ही है। जब किसी कलमे से पहले ता आ जाए या किसी कलमे के आखिर में का की कुमा कुम कुन्ना तुन्ना तुम आ जाए तो इन सब के मानी तुम ही हैं। अब देखें वहां हमने पढ़ा था, वो ज़मीरें भी पढ़ी थी जो कि कलमा से पहले आती हैं, ज़मीरें मुनफसिला। यहाँ वहां हमने पढ़ा था हुआ हुमा हुम हुआ हुमा हा हुमा हुम हुन्ना, यहाँ हम पढ़ रहे हैं अंता अंती अंतुमा अंतुम अंतुन्ना, तू एक मुजक्कर अंता, तू एक मौनस अंती, तुम दो मुजक्कर या दो मौनस अंतुमा, तुम तमाम मुजक्कर अंतुम, तुम सब मौनस अंतुन्ना। इसको इस तरह हमारे टीचर ने याद कराया कि अंता को हमने याद कर लिया था अंटा, अंती को हमने याद कर लिया था अंटी, तो अंता अंटी तो इस तरह याद हो जाएंगे जनाब, अंता एक, तू एक मुजक्कर, अंती यानी अंटी, तू एक मौनस, अंतुमा में दोनों आ गए, तू दो मुजक्कर या तू दो मौनस, अंतुम तुम सब मुजक्कर, अंतुन्ना तुम सब मौनस। अब अगर आप चारों जमीरों को एक साथ लिखें जो हम पढ़ चुके हैं, जो जमीरें हमने थर्ड पर्सन गायब के लिए पढ़ी थी और जो जमीरें अभी हम सेकंड पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप गौर करें तो जो तस्निया के लिए ड्यूल के लिए आता है वो इसी तरह आता है, वा वहां था हुमा, यहाँ है कुमा, और इसी तरह अंतुमा, वहां भी हु हुमा हुम हुआ, इस तरह यहाँ भी कुमा है और अंतुमा है, वहां हुन्ना था या कुन्ना है और अंतुन्ना है, मौनस के लिए जमा मौनस के लिए वहां हुन्ना था या कुन्ना है और अंतुन्ना है, वहां वो तमाम मुजक्कर जमा के लिए, गायब के लिए था हुम, यहां में कुम है और अंतुम है, वहां में गायब मुजक्कर के लिए हुम था, यहां कुम है और अंतुम है, सिर्फ फर्क कहां आता है, वहां था हु हा या का की और अंता अंती है, बट सिर्फ वाहिद में फर्क आता है, जब हम वहां मिला के पढ़ते थे तो मुजक्कर के लिए हु, यहां मुजक्कर के लिए का, वहां मुजक्कर के लिए हा, यहां मौनस के लिए की, वहां मुजक्कर के लिए हुआ, यहां मुजक्कर के लिए अंता, वहां मौनस के लिए या मोनस के लिए अंति, बस यही फर्क है। वरना ये देखें तुम, तुन्ना, कुम, कुन्ना, हुम, हुन्ना एक ही जैसे हैं, अंतुमा, हुमा, कुमा एक ही जैसे हैं, सिर्फ थोड़े से अल्फाज में फर्क है, आवाज उसी तरह निकलती है, बाकी ये आपको याद करना पड़ेगा, अंति, अंता, अंति, का, की, हु, हा, हुआ, हिया, ये याद करना पड़ेगा। तो ये चारों कलमे जब जमीन एक साथ लिख लेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। अच्छा जनाब, तरफाऊ, तरफाऊ में दोबारा आते हैं, तरफाऊ उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं रफा का, रफा करना, बुलंद करना। रफा का कलमा उर्दू में बुलंद के मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे सतह मुर्तफा, यानी वो सतह, वो सरफेस जो कि ऊपर हो, रफी और शान वगैरह। तरफाऊ, यही स्लाइड चल रही है अभी तक, स्लाइड नंबर 6 चल रही है। तरफाऊ रफा, अब जनाब इसको खुद ब्रेक करें, यहाँ ब्रेक नहीं किया गया है। रफा के मानी एक बुलंद करना, तरफा अगर वाव वाली सुना आ जाए और तरफा आ जाए तो तू एक बुलंद कर। ता जम पड़ चुकी कि जब किसी कलमे से पहले ता आ जाए तो वो तू के मानों में आ जाता है। तो रफा के मानी बुलंद करना, तरफा तू एक बुलंद कर, और जब तरफा वाव वाली जमा की अलामत आ जाए तो अब क्या हो जाएगा, तुम सब बुलंद करते हो या करोगे। अब देखिए उर्दू में क्या लिखना पड़ रहा है, तुम सब बुलंद करते हो, और वहां सिर्फ एक ही वर्ड है तरफा। अब इस तरफा में ता भी ये बता रहे कि मुखातिब की बात हो रही है, रफा बता रहे कि ये बुलंद करने के मानों में आ रहा है, और वाव वलीफ ये बता रहा है कि ये जमा के मानों में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हम बेशक हम ग्रामेटिकल तो नहीं पढ़ रहे हैं, मगर कोई बात ग्रामर के अलावा भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसको ग्रामर में किसी और तरीके से कहा जाता है कि भाई जब मैंने आपको बताया कि ता जो है मुखातिब के मानों में आता है, यही चीज जब हम ग्रामर में पढ़ते तो किसी और तरीके से पढ़ते हैं, इस्तिलाहात का फर्क हो जाता है, मानी यही बनते हैं। रफा वहाँ किसी और तरीके से पढ़ते हैं कि भाई रफा जो है एक वर्ब है, उसका बाप क्या है, वो कौन सी सीगे से आ रहा है, मानी यही है बुलंद करने के। और अब एक आयत सामने ज़हन में नहीं आ रही, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत ईसा को उन्होंने बुलंद कर लिया, रफा वहाँ भी मानों में आता है। इसी तरह वाव वलिफ जमा की अलामत है, यहाँ हमने सिंपल करने के लिए बता दिया कि किसी कलमे के आखिर में वाव वलिफ आ जाए तो जमा की अलामत हो गए, वहाँ हम ग्रामेटिकल किसी और तरीके से पढ़ते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, मेरे कहते 8वीं या 9वीं आयत में ये बात आएगी तो वहाँ भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो तरफऊ तुम सब बुलंद करते हो या करोगे, ला तरफऊ तुम सब बुलंद ना करो। रफा आ फौ कौमत तूर, जनाब ठीक है जी, रफा यहाँ पे बुलंद उठाने के मानों में आ गया। तो तरफऊ तुम सब बुलंद करते हो या करोगे, ला तरफऊ तुम सब बुलंद ना करो। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट हमें यह बता रहा है कि यहाँ ये तर्जुमा नहीं हो सकता कि तुम सब बुलंद नहीं करते हो, बल्कि यहाँ हुक्म दिया जा रहा है अहले ईमान तुम अपनी आवाजें बुलंद ना करो। तो ला तरफऊ तुम सब बुलंद ना करो, अभी चूंकि हम दो तोड़ के पढ़ रहे हैं इसलिए वो रिदम नहीं बन रहा, जब इंशाल्लाह क्लास के बाद आप खुद अल्फाज एक साथ मिलाएंगे और तर्जुमा करेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि यहाँ जो है वो सिंपल नेगेटिव के मानों में नहीं आ रहा है बल्कि हुक्म देने के मानों में आ रहा है। अच्छा जी, अगली स्लाइड, स्लाइड 7, अस्वातकुम। अस्वातकुम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। सौत हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं बमानी आवाज के, बल्कि अरब रेडियो स्टेशन के नाम भी सौत से शुरू होते हैं, सौतुल अरब इस किस्म के कुछ नाम भी होते हैं। तो आवाज के लिए सौत के मानी में आता है, और इसको जब हम जमा कर देते हैं जमा में तो हो जाता है अस्वाद, यानी कि आवाजें। तो सिर्फ सौत यानी आवाज और अस्वाद, अस्वाद के मानी आवाजें। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि का की का एक मुसक्कर का, की एक मोनस का, कुमा तुम दो मुसक्कर या तुम दो मोनस का, और कुम तुम सब मुजक्कर का। तो अस्वात कुम तुम सब मुजक्करों की आवाजें, यानी कि तुम सब की आवाजें। जब हमें एक ऐसे ग्रुप की तरफ इशारा करना हो, जनरलाइज करना हो, जिसमें मुजक्कर और मोनस दोनों शामिल हैं, तो हम सीगे जो यूज करते हैं, अल्फाज जो यूज करते हैं, वो मुजक्कर की यूज करते हैं। तो अस्वातुकुम तुम सबकी आवाजें, सौत का कलमा भी उर्दू जबान में मुस्तमिल है, इस्तेमाल किया जाता है। अब जनाब अब कलमात को आप मिला दें, ला तरफऊ तुम सब बुलंद ना करो, अस्वातुकुम अपनी आवाजें। ये अरबी जबान की खूबसूरती देखें कि तरफऊ तुम सब अपनी आवाजें बुलंद ना करो, यहाँ भी जमा का सीगा आया है, प्लूरल कर दिया गया है, और अस्वातुकुम यहाँ भी जमा कर दिया है कि अपनी आवाज से बुलंद ना करो। एक वकील साहब ने मुझे बताया कि अगर अरबी जबान में लीगल डॉक्यूमेंट लिखना हो तो कहीं भी हम गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि कदम कदम पर जो सीगे यूज हो रहे हैं वो उसी हिसाब से यूज होते हैं। तो ला तरफऊ अस्वातुकुम तुम सब अपनी आवाजें बुलंद ना करो, इसका एक फायदा यह भी होता है कि मिसाल के तौर पर अस्वातुकुम से पहले तरफऊ के बाद अस्वातुकुम का अगर हमें मानी नहीं पता हो तो हमें यह मालूम चलेगा कि तरफऊ तो जमा के लिए आ रहा है, कुम भी जो है वो जमा के लिए है, तो अस्वात भी यकीनन जमा के मुतालिक ही कोई बात हो रही है। तो ला तरफऊ अस्वातुकुम तुम सब अपनी आवाजों को बुलंद ना करो। ये आठवीं स्लाइड, स्लाइड नंबर 8, फौ का उर्दू में इस्तेमाल करते हैं फौकियत, एक से दूसरे को बुलंद करना, तरजीहन बुलंद करना। फौकियत के मानी एक दूसरे को बुलंद करना, तरजीहन बुलंद करना, तो फौका के मानी भी यहाँ बुलंद करने के हैं, उर्दू जबान में मुस्तमिल है। अच्छा जी, अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 9, सौतिन नबी, हम पढ़ चुके हैं सौत के मानी आवाज, नबी के मानी भी नबी। अब देखें कायदा यहाँ देख लीजिए कि दो इसम साथ साथ आए, दो नाउन साथ साथ आए, एक पे अलिफ लाम ना लगा हो और दूसरे के साथ अलिफ लाम लगा हो, पहले इसम के साथ अलिफ लाम नहीं लगा हो और दूसरे इसम के साथ अलिफ लाम लगा हो, तो तर्जुमा करते वक्त हम का के की का इजाफा कर देते हैं। जैसे सौती नबी, सौत के मानी आवाज, अन नबी के मानी नबी, सौत से पहले अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है, नबी से पहले अलिफ लाम लगा हुआ है, तो सौती नबी ही नबी की आवाज, फौका सौती नबी ही नबी की आवाज से बुलंद, ज्यादा बुलंद, यानी कि हमने पढ़ चुके हैं कि फौकिया तरजीहन बुलंद के मान तर्जुमे में आता है, तो फौका बुलंद, सौती नबी ही नबी की आवाज, अब इसको एक साथ मिला दीजिए, नबी की आवाज से ज्यादा बुलंद। अब देखिए यहाँ आप अपने पास ये कायदा ये भी नोट कर लीजिए, पहले कायदे तो आपके पास ये लिखा हुआ है कि दो इसम साथ साथ आए, पहले के साथ अलिफ लाम ना लगा हो और दूसरे के साथ अलिफ लाम लगा हो, तो तर्जुमा करते वक्त का के की का इजाफा कर देते हैं। इसको मजीद जनरलाइज कर लेते हैं इसी कायदे को, अल वही मानों में आता है जैसे कि हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हम बुक इस्तेमाल करते हैं, बुक के मानी होते हैं एक किताब, कोई भी किताब, और अगर हम कहते हैं दी बुक तो कोई खास किताब, जैसे अलिफ लाम मीम सूरह बकरा में है जालिकल किताबु, वहां अल किताब आया है, अल किताब के मानी क्या है, कुरान के, तो अल अरबी में वही काम करता है जो कि इंग्लिश में भी काम करता है। तो इसको मजीद जनरलाइज कर दीजिए, दो इसम साथ साथ आए, पहला इसम कॉमन नाउन हो इसमें नकरा हो और दूसरा इसम प्रॉपर नाउन हो यानी इसमें मारफा हो, तो उस वक्त हम तर्जुमा करते हैं का के की का, पहला इसम नकरा हो कॉमन नाउन हो और दूसरा इसम मारफा हो प्रॉपर नाउन हो, तो हम तर्जुमा करते वक्त का के की का इजाफा करते हैं। इस इस्तिलाह को हम कहते हैं मुरकबे इजाफी, यहाँ नहीं लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं मुरकबे इजाफी, इजाफत का तर्जुमा आ जाता है, का के की का तर्जुमा आ जाता है, निस्बत का तर्जुमा आता है, पहले पे अलिफ लाम नहीं लगा होता है, दूसरे पे अलिफ लाम लगा होता है, अमूमन ये होता है कि जो दूसरा इसम होता है उसके नीचे जेर लगी हुई होती है, इसका तरीका ये कि आमतौर पर दूसरे इसम के नीचे जेर लगी हुई होती है। बहरहाल जिस तरह आप इसको याद कर लें, सिंपल ये कि दो इसम साथ साथ आए, एक पर अलिफ लाम ना लगा हो दूसरे पर अलिफ लाम लगा हो, फिर इसको मजीद जनरलाइज कर लीजिए, पहला इसम कॉमन नाउन हो नकरा हो, दूसरा प्रॉपर नाउन हो इसमें मारफा हो, तो तर्जुमा करते हुए हम का के की का यानी कि इजाफत का तर्जुमा कर देते हैं और तरतीब को उलट देते हैं। लेकिन सौतिन नबी ही, पहली बात तो हमें मालूम चल गई कि का के की का इजाफा करेंगे, दूसरा सौत के मानी आवाज, नबी के मानी नबी, तर्जुमा हम तरतीब उलट कर करेंगे, तो ऑर्डर इसका चेंज कर देंगे, नबी को पहले लेके आ जाएंगे, सौत को बाद में लेके आ जाएंगे, बीच में का के की का इजाफा कर देंगे, तो सौतिन नबी ही नबी की आवाज, फौ का सौतिन नबी ही नबी की आवाज से ज्यादा बुलंद। ये बहुत अहम कायदा है, इंशाल्लाह बार बार आएगा ये। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 10, स्लाइड नंबर 10, दसवीं स्लाइड, वला तजहरू, जी हाँ, अल लगने से ये मारफा हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि अल दो अस्मा साथ साथ हों, पहले पे अलिफ लाम ना लगा हो, दूसरे पे अलिफ लाम ना लगा हो, मगर आप इसको कहेंगे वो मारफा नहीं है। मिसाल के तौर पर लड़का या बॉय, तो ये नकरा हो गया, कॉमन नाउन हो गया, मगर मेरा नाम फारूक, तो अब ये खास नाम हो गया, सिटी कोई भी शहर और मदीना मुनव्वरा खास शहर, तो जब कोई कॉमन नाउन हो तो वो सिटी बॉय लड़का शहर हो सकता है, मगर प्रॉपर नाउन में किसी का नाम भी हो सकता है, इसमें अलम भी हो सकता है। तो अगर ऐसे आपको दो ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसमें एक तो कॉमन नाउन हो और दूसरा प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन से मुराद या तो उसे अलिफ लाम लगा हो या वो खुद से बजाते खुद वो प्रॉपर हो, जैसे कि किसी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी कंट्री का नाम, तो वो भी उस वक्त इसमें मारफा हो जाता है और उसका तर्जुमा भी का के की से हम करते हैं। जैसे मदीने का रहने वाला, मदीने का वासी, अब यहाँ शहर का वासी नहीं है बल्कि मदीने का वासी, तो मदीना जो है वो मारफा हो गया और रहने वाला जो है वो नकरा हो गया, तो तर्जुमा करते हुए चूंकि मदीना खास हो गया तो हम का के की का तर्जुमा कर देंगे, इंशाल्लाह इसकी मिसालें आगे आएंगी। अच्छा जी, अगला स्लाइड देखें, वला तजहरू, वा के मानी और, لام پڑھ چکے ہیں، یہ معنی عرف نفی کے لیے بھی آتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تجہرو پہ غور کیجئے، تجہرو کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تا پلس جہر پلس واو ولف. ہم ان نمازوں کو جن میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، ایسے نمازوں کو ہم جہری نمازیں کہتے ہیں، یعنی کہ اردو میں جہر کے معنی ہیں آواز کو بلند کرنا. اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی کلمے سے پہلے تا آ جائے تو اس کے معنی تو کیا آ جاتے ہیں. جہر کے معنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بلند کرنے کے سری نماز ہے اور جہری نماز ہے. تجہرو، تم آواز بلند کرتے ہو. واو ولف آ گیا، جمع کر دیا، تجہرو تم سب آواز بلند کرتے ہو. پہلے تھا واو ولف کے بغیر تم آواز بلند کرتے ہو، تجہرو تم سب آواز بلند کرتے ہو. لا تجہرو یہ حکم کے لیے آیا، تم سب آوازوں کو بلند نہ کرو. لا تجہرو تم سب آوازوں کو بلند نہ کرو. اگلی سلائڈ، سلائڈ نمبر 11. لہو، لام ہم پڑھ چکے ہیں، دو طریقے کا آتا ہے. سلائڈ نمبر 11. لہو لام دو طریقے کا آتا ہے، ایک کے معنی کے لیے آتا ہے، ایک کے معنی یقیناً کے آتے ہیں. ہمیں کانٹیکسٹ سے معلوم چلتا ہے کہ یہاں کون سے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک معنی سے ہی صحیح جملہ تشکیل پائے گا. اگر ہم غلط معنی کرنے جائیں گے اور ایک ساتھ بٹھائیں گے تو ہمیں معلوم ہی چل جائے گا کہ ہم ترجمہ صحیح نہیں کر رہے. تو لام کے دو معنی ہوتے ہیں. اگر آپ کو ان کے ٹرمینالوجیز یاد ہو جائیں، اصطلاحات یاد ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہو تو کوئی بات نہیں. کے لیے والے لام کو ہم کہتے ہیں لام تعلیل، اور یقیناً والے لام کو ہم کہتے ہیں لام لازم. تو ایک لام تعلیل ہوتا ہے، ایک لام لازم ہوتا ہے. ایک لام کے معنی کے لیے ہوتا ہے، ایک لام کے معنی یقیناً کے ہوتا ہے. لہو، ہو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، یہ وہ ضمیر ہیں پروناؤن سے جو کہ اٹیچ ہو کے آتی ہیں، متصل ہو کے آتی ہیں، اور ہو جو ہے وہ غائب تھرڈ پرسن ایک مذکر کے لیے آتا ہے. تو لہو لفظی ترجمہ کریں تو کیا ہوگا، کے لیے اس. اس کو اب ذرا صحیح طریقے سے کرتے ہیں اردو کے حساب سے، اس کے لیے. ولا تجہرو لہو، اور اس کے لیے اونچی آواز میں نہ بولو. اچھا ترجمہ کر دیں گے، اس کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو. اب ظاہر بات ہے زبان میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو تبدیلی تو آتی ہے، اسی لیے عربی زبان سیکھنے کی امپورٹنس یہی ہے کہ کسی بھی زبان کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہو سکتا جب تک اس زبان کو سمجھا نہیں جائے. اب آپ نے لہو ہی دیکھ لیا، لہو ہی دیکھ لیا، اصل میں کیا ترجمہ ہوتا ہے، کے لیے اس کے. مگر اردو کے حساب سے ہم کیا کر رہے ہیں، اردو کے حساب سے جملے کے حساب سے ہم سیٹنگ کر رہے ہیں. ولا تجہرو لہو، اس کے لیے اونچی آواز میں نہ بولو. یہ سلائیڈ نمبر 12. بالقولی، بالقولی کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. با کے معنی میں، ال کے معنی ہم پڑھ چکے خاص کرنے کے لیے، کامن کو پراپر کرنے کے لیے، نقلا کو معرفہ کرنے کے لیے، اور کال ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں گفتگو. تو بالقولی گفتگو میں، یعنی کہ اپنی گفتگو میں. ولا تجہرو لہو بالقولی، اپنی گفتگو میں ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو. لفظی ترجمہ کر کے دیکھیں، وا اور لا نہیں، تجہرو تم سب نہ بولو، لہو ان کے لیے، بالقولی اپنی باتیں. یعنی بالقولی میں اپنی ہم کہاں سے لے کے آ گئے، ظاہر سی بات ہے کانٹیکسٹ یہ بتا رہے ہیں کس کی آواز ہے. ظاہر سی بات ہے اپنی آواز ہی ان کے سامنے نہ بولو، اونچی نہ کرو. ولا تجہرو لہو بالقولی، اپنی گفتگو میں ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو. سلائڈ نمبر 13 سلائڈ. کجہری، سلائڈ نمبر 13. کجہری کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. جہر تو ہم پڑھ چکے ہیں، اونچے آواز میں بات کرنے کو کہتے ہیں. کا کے معنی دیکھ لیجیے جی، جب کلمے کے شروع میں کاف آ جائے کا، تو اس کے معنی یہ حرف تشبیہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کی مانند، مثل، اس کی مثال، جیسے کہ وغیرہ. کا جب ہم کلمے سے پہلے آ جائیں، کسی کلمے سے پہلے آ جائے تو اس کے معنی یہ تشبیہ دے دیتا ہے، مشابہت کیا جاتا ہے، جس کی جیسے کہ اس کے معنی ہو جاتے ہیں کی مانند، مثل، اس کی مثال، جیسے کہ وغیرہ. اجب یہ سب کلمات ہمیں یاد کیسے رہیں گے. اگر ہمیں سورہ حجرات ہی اس طرح جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح یاد ہو جائیں گی، تو انہی کے کتنے الفاظ پورے قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتی ہیں. جیسے آپ نے الذین پڑھ لیا، یا پڑھ لیا، یا ایھا الذین پڑھو، یا ایھا الذین آمنو پڑھ لیا، صرف آمنو پڑھ لیا، تو اگر قرآن پاک میں اندازاً 80,000 الفاظ ہیں تو آمنو پتہ نہیں کتنی ہزار مرتبہ آیا ہوگا، یا کتنی مرتبہ آیا ہوگا، الذین کتنی مرتبہ آیا ہوگا. تو یہ الفاظ ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ان شاء اللہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. پھر کچھ ہمیں اپنی محنت کرنی پڑے گی، ان شاء اللہ آخر میں ہم ڈکشنری دیکھنا پڑھنا سیکھیں گے، تو پھر جب ہم خود سے اپنی اسٹڈی کریں گے تو ڈکشنری سے پڑھ لیں گے ان شاء اللہ. تو کجہری، جس طرح تم اونچی آواز میں بولتے ہو. स्लाइड नंबर 14, स्लाइड 14। बाज़िकुम, बाज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, चन के कुछ चन के इस्तेमाल करते हैं। बाज़िकुम, कुम हम पढ़ चुके हैं पीछे, का तू एक मुज़क्कर का, की तू एक मोनस का, कुम कुमा तुम दो मुज़क्कर का या तुम दो मोनस का, अकुम तुम तमाम मुज़क्कर का। बाज़िकुम, बास चंद के, कुम तुम्हारे, तर्जुमा किस तरह होगा, बाज़िकुम तुम्हारे बास, बाज़िकुम तुम्हारे बास। लिबाज़िन, यहाँ जो ली मानी आया वो के लिए आया है और बास दोबारा बास आया, लिबाज़िन बास के लिए। सिर्फ बाज़िकुम को देखें तर्जुमा क्या होगा, तुम्हारे बास, यानी अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें बास तुम्हारे, लफ्जी तर्जुमा क्या होगा, बास तुम्हारे, लिबाज़िन लिए तुम्हारे। अब इसको जरा सेटिंग कर लीजिए, तुम्हारे बास बास के लिए, यानी तुम्हारे दरमियान जब तुम जिस तरह आपस में बात करते हो इस तरह बताएंगे कि तुम्हारे बास बास के लिए। बाज़िकुम लिबाज़िन तुम्हारे बास बास के लिए, यानी आपस में एक दूसरे के लिए। कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन, जिस तरह का आ गया जिस तरह के मानों में, जिस तरह तुम ऊंची आवाज में आपस में एक दूसरे के साथ बोलते हो। ये आपस में हम कहां से लेके आ गए, बाज़िकुम लिबाज़िन, यानी बाज़िकुम तुम्हारे बास लिबाज़िन बास के लिए। ये तो लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया, बाज़िकुम तुम्हारे बास लिबाज़िन बास के लिए। इसको हमने अपने उर्दू के हिसाब से तर्जुमानी कर दी, आपस में, जिस तरह तुम ऊंची आवाज में आपस में एक दूसरे के साथ बोलते हो। अच्छा जी, स्लाइड नंबर 15, स्लाइड 15। वला तजहरु लहू बिलकौल कजहरि बादिकुम लिबादिन, जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसको लफ्ज़ी तर्जुमा भी कर लीजिए। वा नहीं तजहरू, तुम सब बोलते हो, लहू उनके लिए, बिलकौली अपनी आवाजें, कजारी ऊंची, बाज़िकुम लिबाज़िन बास तुम्हारे बास के लिए, उनके हजूर यूं ऊंची आवाज में गुफ्तगू ना करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से ऊंची आवाज में गुफ्तगू करते हो। स्लाइड नंबर 16, स्लाइड 16। अच्छा जी, हमने पढ़ा था कि इन्ना और अन्ना, स्लाइड नंबर 16 पे हम आ गए हैं। इन्ना और अन्ना दोनों के मानी बेशक हैं, मगर यहाँ हम पढ़ रहे हैं अन और इन। फर्क क्या है कि वहाँ नून पर तजदीद आती है, नून पर शद आता है, यहाँ नून पर सकून आ रहा है। और जब अन आ जाए तो इसके मानी के आता है, और इन के मानी आए तो इन आ जाए तो इसके मानी अगर के आता है। अशहदु अन ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ के, तो अन के मानी के, इन के मानी अगर। पहले हमने पढ़ा था कि नून के ऊपर शद हो तो चाहे अलिफ पर जबर हो या जेर, हर हाल में इसके मानी बेशक और यकीनन के होंगे। और अगर आप देखें तो नून के ऊपर सुकून है और अलिफ पर जबर हो तो उसके मानी होंगे के, और जेर हो तो इन के मानी होंगे अगर। अब तहबता, हब्त करना, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करने के, उसके हवास हब्त हो जाते हैं, मखबूतुल हवास यानी कि जाया हो जाना, बर्बाद हो जाना, हब्त के मानी जाया हो जाना, बर्बाद हो जाना। ता पहले आ गया, ता जब कलमे से पहले आ जाए तो मुखातिब के लिए हो जाता है। तहबता, तुम्हारे आमाल खप्त हो जाएं, तुम्हारे आमाल जाया हो जाएं, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं। आमालुकुम, आमाल अमल की जमा, और कुम हम पढ़ चुके हैं, का की कुमा कुम कुन्ना तुम सब की, आमालुकुम तुम सब के आमाल। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 17 स्लाइड। वा के मानी और, अंतुम हम पीछे पढ़ चुके हैं, अंता अंती अंतुमा अंतुम अंतुन्ना अंतुम तुम सब, ला नहीं और मना दोनों करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्लाइड नंबर 18 तशुरून, इसको जनाब तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हम ये देख लीजिए कि जहां अरब जबर लगाते हैं वहां हम उर्दू तलफ्फुज में अलिफ लिखते हैं, जहां अरब जबर लगाते हैं वहां हम उर्दू तलफ्फुज में अलिफ लिखते हैं, जहां अरब ज़ेर लगाते हैं वहां हम उर्दू तलफ्फुज़ में या लिखते हैं, और जहां अरब पेश लगाते हैं वहां हम उर्दू तलफ्फुज़ में वाव लिखते हैं। अब जनाब शऊर या ऐन पर पेश है, हम वहां वाव लगा देते हैं, शऊर यानी इसके मानी समझ के हैं। तशउरून को तीन हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, ता मुखातिब की अलामत, शऊर शऊर के मानी में, वाव नून जमा की अलामत, तशउरु तुम शऊर रखते हो, तशउरून वाव नून जमा की अलामत आ गई तो तुम सब शऊर रखते हो। और ला, अब यहाँ ये सिंपल नेगेटिव के मानों में आया है, ला तशुरून तुम सब शऊर नहीं रखते, वाव नून ने जमा को कर दिया, ला तशुरून तुम सब शऊर नहीं रखते। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 19। یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان لا ترفعوا اصواتکم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی اللہ کے نبی کے آواز کے سامنے ولا تجہروا اور نہ بلند کرو لہو بالقول اپنی آوازیں کجہر بعضکم لبعض جیسا کہ تم آپس میں بلند کرتے ہو باتیں کرتے ہو ان تحبط اعمالکم کہ کہیں ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو تمہیں خبر ہی نہ ہو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو الحمدللہ ہماری دو آیات مکمل ہو چکی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ہم تیسری آیت لے کے بیٹھیں گے۔ کچھ اور کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ ہو کوئی باتیں ہو تو پلیز بتا دیجیے۔